कृति कैसे हो सकती है। तो इसके कई उपाय हैं। जिस साधक को जिस तरह से सूझता है उस तरह से वो करता है। पहली बात तो ये है कि वासनाओं के परिणाम को देखो, तो उससे भी उनका त्याग करने की सामर्थ्य आ जाएगी। परिणाम क्या है ऐसा सोचिए, तो परिणाम में आपको पता चलेगा कि वासनाओं से प्रेरित रहने वाला व्यक्ति संसार में शांतिपूर्वक सुखपूर्वक रह नहीं सकता। वासनाओं से प्रेरित व्यक्ति सम्मान पूर्वक दुनिया में रह नहीं सकता, ये उसका त्याग करेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब आदमी अपने को साधक स्वीकार करता है तो इस स्वीकृति से अहंता में परिवर्तन आता है। जिन्होंने अपने को सुख का भोगी स्वीकार किया कि मैं दुनिया में आया हूँ सुख भोगने के लिए, तो उनमें तो बल नहीं मिलेगा वासनाओं के त्याग का। लेकिन जिन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं संसार में आया हूँ साधक होकर सफलता पाने के लिए, तो वे वासनाओं का त्याग कर सकेंगे। तो एक तो अपने संकल्प में अपनी स्वीकृति में बल है जो आपको त्यागी बना सकता है। दूसरी बात होती है मनोविज्ञान के स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या है कि जिन्होंने वासनाओं की पूर्ति की चेष्टा की, उन व्यक्तियों ने अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों को बताया कि वासनाओं की उत्पत्ति में भी मनुष्य की हानि होती है और पूर्ति में भी हानि होती है, अपूर्ति में भी हानि होती है। जो लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं वे लोग वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उत्पत्ति में क्या हो गया, तो मनोविज्ञान के खोज में यह बताया गया है कि जिस समय मनुष्य के जीवन में कोई वासना उदित हो जाती है उसकी उत्पत्ति मात्र से ही उसका मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन उसका भंग हो जाता है। तो उत्पत्ति मात्र से मनुष्य अपने स्वाभाविक जीवन से हट गया। तो जैसे आपको पता चल जाए तकलीफ हो पेट में और चिकित्सक आपको बता दे कि आपका लीवर खराब हो गया है, अगर चिकनी चीज खाइएगा तो नुकसान कर जाएगी, तो स्वास्थ्य का अगर ख्याल है आपका तो चिकनी खाना छोड़ देते हैं कि नहीं, जी छोड़ देते हैं। जो शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है वो चिकित्सक की सलाह मान लेता है। तो उसी तरह से जिनको ऊंचा जीवन चाहिए और जो इस बात को जान लेते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर, अध्ययनकर्ताओं की सलाह के आधार पर, ये लोग सहज भाव से वासनाओं से मुक्त होते हैं। क्या है उसमें, तो भाई जैसे ही कोई कामना कोई वासना उत्पन्न हुई नहीं कि मनुष्य अपने इक्विलिब्रियम से हट गया, संतुलन से विचलित हो गया, तो मनुष्य के जीवन में संतुलन भंग हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा घाटा है। इसको जान करके अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखते हैं लोग। दूसरी बात क्या है कि अगर उस इच्छा की उस वासना की पूर्ति हुई तो उस वासना के पूर्ति के सुख के भोग में व्यक्ति बहुत ही दुर्बल हो जाता है। कोई भी भोग प्रवृत्ति मनुष्य में से भोगने की शक्ति को नष्ट कर देती है। आप सब लोगों को मालूम है अगर बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए और लालच से आप खाने लग जाए तो खाते खाते कितनी देर खा सकेंगे, खाने की शक्ति खत्म होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। नाचने गाने में खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है आपका, तो नाचना गाना शुरू करिए और खूब गाइए खूब नाचिए, कितनी देर कर सकते हैं, शक्ति खत्म होगी कि नहीं होगी, होगी। तो भोग प्रवृत्ति से शक्ति का ह्रास होता है। एक तो शारीरिक शक्ति क्षय हो गई भोग प्रवृत्ति में, इसको आपने अपने अनुभव से जाना। दूसरी बात क्या है कि भोग प्रवृत्ति जो है भोग की क्रिया में जो थोड़ा सा सुखाभास है वह मनुष्य को भोग्य वस्तुओं की दासता में बांध देता है। तो जो सजग व्यक्ति हैं उनको दासता पसंद नहीं है, इसलिए वे वासनाओं को प्रश्रय नहीं देते हैं। तो उत्पत्ति में शांति भंग हो गई, पूर्ति में दासता आ गई, और पूर्ति नहीं हुई अपूर्ति हो गई, बाधा पड़ गई तो क्षोभ हो गया। तो उत्पत्ति में अशांति, पूर्ति में दासता, अपूर्ति में क्षोभ, पसंद करिएगा जी, नहीं करिएगा। तो ये वैज्ञानिक स्तर की चीज है, इसको भी जान करके जो सजग व्यक्ति होते हैं वे सहज भाव से अपने जीवन में वासनाओं से परहेज रखते हैं, संभालते हैं। तो यहाँ तक संभालने की बात हो गई, अब जड़ काटने की बात क्या है, कहाँ से वासनाओं की जड़ कट जाती है? तो जड़ कट जाती है ज्ञान और प्रेम से। क्या होता है? तो विवेक के प्रकाश में यह जाना गया कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने अपने को देह से तादात्म्य कर लिया। देह में मन बुद्धि अहम बुद्धि, ये संतजनों की भाषा है वैज्ञानिकों के पास, शरीर को मैं मानना और शरीर को मेरा मानना, ये भ्रम है। तो पहले जो दो तीन बैठकें हो चुकी उनमें आपने पृष्ठभूमि को प्राप्त कर ही लिया है कि भाई मैं की उत्पत्ति अनंत तत्व से हुई है, शरीर की उत्पत्ति भौतिक तत्व से हुई है, तो मेरे में और शरीर में तो सजातीयता है ही नहीं, मिलते ही नहीं है। तो विवेक के प्रकाश में जिन लोगों ने देह में से मम बुद्धि और अहम बुद्धि निकाल दिया, देह मैं हूँ और देह मेरी है, इस भूल को जिन्होंने छोड़ दिया, उनमें से वासनाओं का अंत हो जाता है, वासनाएं उदित नहीं होती है, ये ज्ञान का प्रकाश हुआ। फिर जो बड़े ही हृदयशील व्यक्ति होते हैं बनावट से ही, पर पीड़ा जिनके हृदय में प्रवेश कर जाती है, दुखी जन के दुख से जो द्रवित हो जाते हैं, उनमें से सुख की वासनाओं का स्वतः ही अंत हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल प्रयोग है वासनाओं से मुक्त होने का, कि पर पीड़ा को अपने हृदय में धारण करना सीखा जाए। तो पीड़ित लोगों के परिवार में, जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में, नगर में व्यक्ति और कोई प्राणी, ये सब पीड़ित मिलते ही रहते हैं। एक शरीर में पीड़ा होती है तो भी हम लोगों को समझते हैं, भोगते हैं, और अनेक शरीरों में पीड़ा होती है तो उसको भी अनुभव किया जाता है। तो मनुष्य में इस प्रकार की हृदयशीलता प्रारंभ से ही विद्यमान है कि जब वह किसी पीड़ित को देखता है तो उसे अपनी पीड़ा का पीड़ा के आधार पर भास होता है, ये शरीर पीड़ित है, क्रांति है। तो पर पीड़ा को हृदय में धारण करने से सुख की वासनाओं का अंत हो जाता है, ध्यान में ही नहीं आता, आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तो पर पीड़ा से पीड़ित होने पर वासनाएं मिटती हैं, करुणा का जो रस प्रवाहित होता है, ममता, ममता के संबंध से पैदा की हुई संतान के दुख से, तो पशु पक्षी भी दुखी होते हैं, आदमी दुखी हो गया तो कौन बड़ी बात है, ठीक है ना? पैदा किए हुए बाल बच्चों को दुख में देखो तो ऐसे ही व्यक्ति दुखी हो जाता है, बहुत पीड़ित हो जाता है। मैंने माताओं को देखा है, बच्चे बीमार हो जाएं तो खाना पीना स्नान करना सोना सब भूल जाती है, खेल तमाशे और राग रंग की तो कोई बात ही नहीं है, शरीर की आवश्यक क्रियाएं भी उनकी छूट जाती हैं। तो ममता का प्रभाव इतना होता है तो फिर उससे आगे का प्रभाव देखिए बहुत अधिक है। उससे आगे क्या है कि मनुष्य होने के नाते, संसार से संबंध रखने के नाते, जिन लोगों से अपनी ममता का संबंध नहीं है, उनकी पीड़ा को अगर हृदय में धारण करो, अनुभव करो, उसमें सहयोग देना आरंभ करो, तो इसका बड़ा भारी प्रभाव होता है कि जो हृदय पर पीड़ा से पीड़ित होता है उस हृदय में सुख में उनकी वासना नहीं रहती है। तो ये संसार के साथ संबंध रखकर पर पीड़ा में शामिल होने का परिणाम हुआ। फिर अब उसके आगे देखो, अगर किसी व्यक्ति ने ईश्वर विश्वास की अभिलाषा है कि हम भगवत भक्त होकर रहते, हम प्रभु के होकर रहते, हम उनकी उनके लिए इस जीवन को प्रेम तत्वों में बदलकर उपयोगी होते तो आनंदमय को आनंदित करने की अभिलाषा, रस स्वरूप को रस प्रदान करने की अभिलाषा, यह मानव जीवन की एक विशेषता है और कहीं नहीं है। केवल मनुष्य को ही इतनी ऐसे बढ़िया ढंग से बनाया गया है, मनुष्य ही इस बात की अभिलाषा लेकर खड़ा होता है कि ठीक है जिसने मुझे बनाया, जो जीवन दाता है मेरा, जो जन्म दाता है मेरा, जो सृष्टि करता है, जिसने मुझे इस संसार में रखा है, हम तो उसके लिए उपयोगी बनेंगे। तो ऐसी अभिलाषा मनुष्य के जीवन में जगती है और इस अभिलाषा को लेकर के जब वह प्रेम तत्व के विकास के लिए अग्रसर होता है तो प्रेम की प्रतीक्षा में, प्रेम की आवश्यकता महसूस करने में इतना आकर्षण और इतनी मधुरता है कि उसी में अनेक प्रकार की वासनाओं का अंत हो जाता है। ज्ञान के आधार पर वासनाओं को मिटाया जाता है, भक्ति के आधार पर वासनाओं को मिटाया जाता है, परपीड़ा से द्रवित होने के आधार पर वासनाओं को मिटाया जाता है, अपने को साधक स्वीकार करके संयम नियम के आधार पर वासनाओं पर नियंत्रण किया जाता है और सबसे जो प्रारंभिक कदम है इस दिशा में मानव सेवा समिति खोज में वो है कि जिस दिन से आपके भीतर यह आवश्यकता जगे कि हमारा जीवन वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, जिस दिन से ये आवश्यकता आप में उत्पन्न हो उस दिन से किसी प्रकार का नया सुख भोगना बंद कर दीजिए। नया पुराना तो हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, बहुत प्रकार के सुख भोगों में मैंने समय और शक्ति को गंवाया है, जो हो गया वो तो हो गया, बीत गया है। अब नए ढंग से क्या करना है, तो नए ढंग से यह करना है कि जिस किसी भाई बहन को वासनाओं से फ्री होने की अभिलाषा हो उनको किसी प्रकार का नया सुख नहीं लेना चाहिए। तो नया नहीं लेने से क्या होता है कि नया राग नहीं बनता है, और दुखी जनों की सेवा में घुल मिल जाने से क्या होता है कि पुरानी बातें जितनी हैं चित्त पर प्रभाव डाली हुई वो सब खत्म हो जाती हैं। तो नया सुख नहीं लेंगे तो नया राग नहीं बनेगा और सुख की का भोग छोड़ करके सेवा आरंभ करेंगे तो पुराने रगे जमे हुए राग मिट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। तो वासनाओं से मुक्त होने का यह उपाय अनेक रूपों में है और अनेक स्तर पर है, जिस साधक को जहां से सूझे जैसे सूझे वैसे ही करना चाहिए। इस दिशा में मुझे जो सबसे पहले बल मिला, रास्ता मिला कि कैसे संभालना चाहिए अपने को, तो उसमें अपनी स्वीकृति बदलने का बड़ा भारी प्रभाव मैंने पाया। बक्सर में स्वामी जी महाराज थे, सत्संग का बड़ा समारोह हो रहा था, वहां मैं पहुंच गई और जैसे ही सत्संग की बैठक आरंभ हुई मैं उठकर खड़ी हो गई सभा में, मेरा प्रश्न है मुझे उत्तर चाहिए। महाराज ने कहा पूछो, और मैंने ये तीन वाक्य सुना दिए। यह हमारे दुखी जीवन का एक चित्र था, ये खोज थी अपनी, अपने को ऐसा महसूस होता था और मैं गाती रहती थी, जो चाहती हूँ सो होता नहीं है, जो होता है सो भाता नहीं है, जो भाता है सो रहता नहीं है, मैं क्यों उठाऊं ऐसी जिंदगी का भार। तो महाराज ने सुना और बड़ी शांति से धीरे से उन्होंने कह दिया कि लाली तुम्हारा ही अनुभव है कि तुम जो चाहती हो सो होता नहीं है, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती। बस इतने में उत्तर हो गया, 15 मिनट मैंने प्रश्न सुनाया, जीवन की दुखद घटनाओं का उल्लेख करते हुए 15 मिनट लगाया मैंने प्रश्न करने में और उत्तर उन्होंने एक वाक्य में दिया कि तुम्हारा ही अनुभव है, तुम ही जानती हो कि जो चाहती हो सो नहीं होता है, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती, छोड़ दो तो सब काम खत्म हो गया। ये बात ऐसे सहज से तो मेरी पकड़ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे यह बताया कि भाई मनुष्य के जीवन में तो सुख भोग का कोई स्थान ही नहीं है, मनुष्य तो पैदा ही हुआ है सत्य की खोज के लिए, भगवत भक्ति के लिए, अमर जीवन पाने के लिए, तो तुमने जिंदगी का अर्थ ही गलत लगाया, इसलिए दुख में फंसी हो। मानव जीवन का अर्थ सुख का भोग नहीं है, मानव जीवन का अर्थ है सेवा त्याग प्रेम। तो जब मुझे ये मालूम हुआ कि इस जिंदगी का अर्थ ही नहीं है सुख भोग, तो हमने कहा कि तब तो ठीक है, अच्छी बात है, अर्थ बदल दो। तो अर्थ बदल दिया और मेरे सामने की सब बाधाएं उसी समय उसी सभा में जहां बैठ करके मैं प्रश्न कर रही थी, उत्तर मैंने लिया और मेरे सिर का भार उतर गया। तो जिन कई भाइयों ने प्रश्न दिया है, दो तीन प्रश्न इस प्रकार के हैं कि वासना रहित होने का उपाय बताइए और निवृत्ति उसकी निवृत्ति का उपाय बताइए, और ऐसे ऐसे दो तीन प्रश्न हैं। तो सचमुच मनुष्य के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सभी लोग शांति से वंचित हैं तो उसी के कारण, मुक्ति से वंचित हैं तो उसी के कारण, शारीरिक और मानसिक रोग में फंसे हुए हैं तो उसी के कारण, ये सब भी बातें हैं। मन का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, कितनी प्रकार की तकलीफें, कहाँ कहाँ तो जीवन सेवा त्याग और प्रेम से भरपूर होकर अपने लिए भी आनंदमय हो सकता है, जगत के लिए भी आनंदमय हो सकता है, जगत पति के लिए भी अति उपयोगी हो सकता है, वही जीवन एकदम मिट्टी का ढेर बन जाता है, धोया ही नहीं जाता, अजीब तरह की हालत हो जाती है। तो मैं बता रही हूँ, आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि इस दिशा में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मानव जीवन के अर्थ के संबंध में अपनी दृष्टि स्पष्ट कर लेनी चाहिए। इस जीवन का अर्थ अगर सुख भोग लोगे तो कभी भी एक कदम साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि अपना जो दृष्टिकोण है, सेल्फ कंसेप्ट जो है, अपने संबंध में जो व्यक्ति अपनी धारणाएं बनाकर रखता है, उसी के अनुसार संकल्प उठते हैं, उसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं, उसी के अनुसार दशा बन जाती है। जैसी धारणा अपने संबंध में रखो, तो मुझे इस दिशा में अपने जीवन के संबंध में धारणा बदल डालने से बड़ा बल मिल गया, बहुत से झंझट खत्म हो गए। नहीं तो मैं क्या बताऊं, दुख की कथा ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, बहुत बार आप तरह तरह की बात भाषाओं में सुन चुके हैं। एक तो दुख इस बात का कि जो चाहती हूं तो होता नहीं है, तो जो सुख मुझे पसंद है वो मिले नहीं, तो उसके न मिलने का दुख, और उससे भी बड़ा दुख इस बात का कि मैं इतनी विवश क्यों हूं, मैं इतनी पराधीन क्यों हूं। तो मैं पूछूं अपने से सयाने लोगों से कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो जिससे पूछो वही कह दे कि भाई ये तो भाग्य की बात है, प्रारब्ध की बात है। तो अब और दुख भोगो, एक दुख तो इस बात का कि सुख नहीं मिला, दूसरा दुख इस बात का कि मैं बेबसी में फंसी हूँ, तीसरा दुख इस बात का कि पूर्व जन्म के मेरे कर्म बुरे हुए। और कितना भार ढोए आदमी, कितना भार है बताओ। सुख ना मिला तो नहीं मिला तो उतने ही दूर मन में सोच के रह जाओ, सो नहीं, उस पर से एक दूसरा दुख, उस पर से एक तीसरा दुख, जन समाज के बीच में सब लोगों के समान होकर रहने की एक वासना, उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो एक दीन भाव भोग रहे हो, उसका भी दुख। कितना दुख आदमी ढो सकता है। अगर सजग हैं आप, सजीव हैं आप, चेतना है आप में, ऊंचे जीवन की अभिलाषा है आप में, तो जीवन की ये जो परिस्थितियां बनती हैं, जो दुख व्यक्ति अनुभव करता है, ये दुख ही आपको बहुत ऊंचा उठा देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कोई चेतना वाला तो हो, कोई सोचना तो आरंभ करे, सत्य को स्वीकार तो करे। तो इस आधार पर मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि मनुष्य का जीवन ही नहीं है सुख भोग के लिए। सुख भोगने के लिए तो बहुत सी योनियां हैं, कहीं कहीं केवल सुख भोग की बाध्यता है और कहीं सुख दुख दोनों के भोग की बाध्यता है। पशु पक्षियों की जीवन में आप देखेंगे प्रकृति जनित शरीर जनित सुख दुख की भोग की बाध्यता है। उनके आगे सुख आवे तो वे सुख भी नहीं छोड़ सकते, उनके आगे दुख आवे तो वे दुख भी नहीं छोड़ सकते। केवल आप ही ऐसे बनाए गए हैं, ऐसी अच्छी प्लानिंग है इस जिंदगी की कि आपने इतनी बहादुरी है कि सुख आवे तो आप उसको ठुकरा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो नहीं नहीं, मुझे तो अनंत आनंद चाहिए। इसलिए पराधीनता, अभाव, शक्तिहीनता, नीरसता उत्पन्न करने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। तो आप में इतनी क्षमता है कि आए हुए सुख को इनकार कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आए हुए दुख के सिर पर पांव रख सकते हैं। ये प्रश्न जो है कि कैसे हल हो, तो केवल मानव जीवन का आदर करिए, अपने जीवन के महत्व को स्वीकार करिए, तो आप में अदम्य शक्ति ऐसे ही अंदर से ही प्रकट हो जाएगी कि उसकी सहायता से जो आप निर्भूल होना चाहेंगे निर्भूल हो सकते हैं, वासना रहित होना चाहेंगे वासना रहित हो सकते हैं। जड़ तो कट जाती है वहीं पर, कंसेप्ट बदलने से ही जीवन बदल जाता है। तो अब हम लोगों के लिए करणीय क्या है? हम लोगों के लिए करणीय यह है कि अब कोई नया प्रभाव इस प्रकार का अंकित नहीं होने देना है, ठीक है ना। पहले जो हो चुका उसका उपचार तो उपचार पीछे करेंगे इसके बाद, लेकिन सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात साधक के जीवन में यह होनी चाहिए कि दृश्य के संयोग से किसी प्रकार का व्यक्तिगत सुख न मिले। इस बात के लिए अगर हम तैयार नहीं है तो पुराने पुराने पर नियंत्रण करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, उपवास करते जाओ और नए नए और अंकित होते चले जाएंगे, शुद्धि नहीं हो पाएगी। पहले मैं ऐसा नहीं करता था और अब मैं ऐसा करता हूं, तो क्रिया में एडिशन हो गया, उस मैं में कुछ योग नहीं हुआ, तो वो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रहता है। ये अपना भ्रम ही है कि इस सुख के बिना तो हम रह ही नहीं सकते और इस सामान के बिना हम रह ही नहीं सकते और इस साथी के बिना हम रह ही नहीं सकते। ये कोरा का कोरा भ्रम है। और स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर वाक्य बताए, ऐसा कहा कि देखो भाई, जो तुम्हारे बिना रह सकता है उसके बिना तुम स्वेच्छा से रहना पसंद करो। बेवशी में तो रहते ही हो, सुनने की शक्ति खत्म हो गई तो उसके बाद भी आदमी रहता है कि नहीं रहता है। मिला हुआ पद चला गया, कमाया हुआ धन डूब गया, जोड़े हुए कुटुंबी बिछुड़ गए, उसके बाद भी आदमी रहता है कि नहीं रहता ही है। लेकिन बेबसी में रहोगे, झक मार कर रहोगे, दुखी होकर रहोगे, तो पहले ही ज्ञान पूर्वक विवेक के प्रकाश में विचार करो, कौन कौन ऐसा है जो मेरे बिना रह सकता है? जो तुम्हारे बिना रह सकता है उसके बिना तुम रहने के लिए तैयार हो जाओ, समस्या हल हो जाएगी। बड़े सुंदर वाक्य हैं, पांच वाक्य स्वामी जी महाराज ने बताए। नई पुस्तिका थोड़ी छोटी सी छपी है, उसमें लिखा भी है कि जागृत का संसार जो है वो स्वप्न में छूट जाता है, ठीक है ना। तो उसके बिना हम लोगों को रहना चाहिए। और स्वप्न का संसार जो है वो सुषुप्ति में छूट जाता है, तो स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है उसके बिना भी हम लोगों को रहना चाहिए। और सुषुप्ति का जो कुछ है वह समाधि में छूट जाता है, और समाधि में जो कुछ है वो बोध में छूट जाता है। तो जो अंत में रह जाता है, जो छूट नहीं सकता, उसी के साथ रहना पसंद करो तो सब पर विजय पाना सहज हो जाएगा। तो भाई राग रहित होने की आवश्यकता को महसूस करिए, ये सब उपाय अपने लोगों के लिए संभव हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको कठिन लगेगा, शुरू शुरू में मालूम होगा कि कैसे हम संभाल सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कठिन है नहीं। महाराज ने कहा कि तब क्या करोगे कि बैठे हो, शांति का समय है, अप्रयत्न हो, अविनाशी जीवन की ओर आगे बढ़ना है, उस शांति संपादन काल में अगर तरह तरह के संकल्प आ गए तो तुम्हारी सजगता का अर्थ क्या होना चाहिए कि उन संकल्पों को देख लो। अगर व्यक्तिगत सुख का संकल्प है तो तत्काल उसी समय उसको इनकार कर दो कि नहीं नहीं ये तो भूल काल की बात थी कि मैं ऐसा ऐसा करता था, अब तो मैं साधक हूँ, मेरे जीवन में इस संकल्प पूर्ति का कोई महत्व नहीं, ऐसा इनकार कर दीजिए तो आप ही की सत्ता से आपके सिर पर चढ़ने वाला वह संकल्प आपकी सत्ता से डिटैच होते ही मर जाएगा। कठिन बात नहीं है, आप करके देख लीजिए। तो उसको तो उसी समय इनकार कर दिया तो गया, उसकी अपनी सत्ता नहीं है, मेरी स्वीकृति से उसको सत्ता मिल जाती है। हमने इनकार कर दिया वो सत्ता विहीन होकर के खत्म हो गया, फिर नहीं आएगा, कभी नहीं दिखाई देगा। और ऐसे संकल्प जिसमें कि समूह का हित है, परिवार का हित है, समाज का हित है, दुखी जन का हित है, बच्चों का हित है, पशु पक्षियों का हित है, वनस्पति का हित है, ऐसे हितकर संकल्प उठे जिसमें आपका व्यक्तिगत भी शामिल हो, कोई डर नहीं है, उससे अपराध नहीं लगेगा। लेकिन जो सामूहिक हित के संकल्प हो उनको आप यथा संभव यथा सामर्थ्य पूरा करने की कोशिश करिए, और सावधान केवल इतना रहिए कि उन संकल्पों की पूर्ति के बाद उससे उत्पन्न होने वाला सुख और सम्मान अपने को नहीं चाहिए। तो लाभ होता जाए तो समूह को देते जाओ और अपने को अलग करके रख लो। तो इस उपाय से पुराने राग निकल निकल करके खत्म हो जाएंगे और नए राग पैदा नहीं होंगे, उसके बाद जीवन में अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। ये अनुभवी संत जन का अनुभव है। अब कल संध्या समय की जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया कि मानव सेवा संघ की दृष्टि से साधक के जीवन में संसार का कितना महत्व है, क्या अर्थ है, उसके साथ कैसे करना चाहिए, कैसे उसके काम आना चाहिए, कैसे उसकी दासता से मुक्त होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। अब अपनेपन का भाव हम सब भाई बहनों को है, मैं हूं, ये पहली बात है। उसके बाद एक प्रतीत होने वाला जगत है जिसके संबंध में चर्चा हो गई कि जिसकी प्रतीति हो रही है, सत्य क्या है हम सब लोग नहीं जानते हैं। हम बदलते जाते हैं तो दृश्य बदलता जाता है, और भौतिक सीमा को हम पार कर जाते हैं तो भौतिक जगत लुप्त हो जाता है, ऐसी चर्चा कल शाम की बैठक में हो गई थी। अब मैंपन और प्रतीत होने वाले जगत से भिन्न एक और कंसेप्ट, एक और धारणा मनुष्य के जीवन से बहुत घना संबंध रखने वाली है, और वो है भगवान के संबंध में हमारी आपकी धारणा। सुना करते हैं हम, क्या सुनते हैं कि मुझको और दिखाई देने वाले जगत को बनाने वाला कोई है, उसी को भक्तजन भगवान कहते हैं। तो हमारे आपके जीवन में उस सुने हुए भगवान का क्या महत्व है, हमने सुना है उसका क्या महत्व है, इस पर मानव सेवा संघ की दृष्टि से विचार करेंगे। तो स्वामी जी महाराज के मुख से आपने सुना कि मैं कट्टर ईश्वरवादी हूं परंतु ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं, सुना है ना जी, मैं कट्टर ईश्वरवादी हूं लेकिन ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं हूं। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में ईश्वरवाद एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उन्हीं ईश्वर की रची हुई इस सृष्टि में
बहुत से व्यक्तित्व ऐसे हैं जो ईश्वर को मान करके जीवन का आरंभ नहीं करते। अभी उन्हीं की रचना है। हमारे से जब बातचीत होती है और लोग ऐसा प्रश्न रखते हैं तो मैं कह देती हूँ, अरे भाई आप तो मेरे प्यारे की ही बनाई हुई रचना में से एक हैं। तो जब उन्हीं ने आपको ऐसा बनाया कि आप ईश्वर का नाम नहीं लेंगे तो हम काहे के लिए आप पर जबरदस्ती ईश्वर का नाम थोपे, ठीक है ना? तो अलग अलग प्रकार के सांचे हैं उनके पास, विविध रूप व्यक्तित्व के लिए ढांचा है। वो किस किस ढांचे में किस किस को ढालते हैं, कैसा कैसा वे रचते हैं, तो हर व्यक्ति सहज भाव से ईश्वर विश्वास करना नहीं पसंद करता है। तो मानव सेवा संघ ने मानव जीवन को सामने रख करके ईश्वरवाद की दृष्टि से यह बताया कि भाई अगर तुम नहीं पसंद करते हो ईश्वर विश्वासी हो ना, तो अपने साथ जबरदस्ती मत करो। ना पसंद करने पर भी यदि तुम मनुष्य हो, विश्वास पक्ष को छोड़ दो और विचार पक्ष को सामने लेकर चलो, तो तुम्हारा भी विकास होगा और अंत में जब वही आकर मिल जाएगा तो तुम्हारी मौज हो तो मान लेना, और नहीं तो सत्य के नाम से कहकर, नित्य तत्व के नाम से कहकर, ब्रह्म के नाम से कहकर, योग तत्व के नाम से, परम तत्व के नाम से, अनंत तत्व के नाम से, जिस नाम से पुकारने की इच्छा हो तुम्हारी कर देना, कोई बात ही नहीं है, लेकिन है वो ही। तो साधक के जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही उदार दृष्टि रखनी चाहिए, विशेष करके मानव सेवा संघ के प्रेमियों को, कि अगर अपने को ईश्वर विश्वास फिट नहीं बैठता है तो हीन भावना से पीड़ित मत होइए कि हाय मेरा तो उद्धार होगा ही नहीं क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आप ईश्वर विश्वासी हैं और दूसरे लोग कोई मिल जाए आपको जो विश्वास करना ना पसंद करता हो, तो आप जोर डाल करके उसको समझाने की कोशिश मत करिए कि तुमको विश्वास करना चाहिए। खुद भी करने का स्वभाव, आपका स्वभाव से रुचि आपकी होती हो तो विश्वास कीजिए, और स्वाभाविक रुचि नहीं है तो अपने साथ जबरदस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि उसी ईश्वर ने मनुष्य के जीवन को अनंत तत्व से अभिन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं कर दी, जबरदस्ती काहे को करेंगे। अगर विश्वास पथ अपने लिए फिट नहीं बैठता है तो विचार पथ से जीवन को आरंभ करेंगे। विचार का तत्व भी तो अपने पास है ना जी, है तो वहां से करेंगे। तो मानव सेवा संघ का निवेदन यह है कि आप अपने व्यक्तित्व की रचना के अनुसार अपनी साधना आरंभ करिए और अन्य लोगों को, अन्य भाई बहनों को, सभी साधकों को स्वाधीनता पूर्वक उनकी रचना के अनुसार उनकी साधना पर चलने दीजिए। तो ना अपने मत का आग्रह करो और ना दूसरों के मत का विरोध करो, ये मानव सेवा संघ का परामर्श है। अपने मत का आग्रह मत करो और दूसरों के मत का विरोध मत करो, बड़ा अच्छा जीवन बनता है। इतना इतना बढ़िया सामंजस्य बैठता है कि अनेक प्रकार की भिन्नता के होते हुए भी मानव मात्र के बीच में एकता हम रख सकते हैं, स्नेह की एकता, सद्भाव की एकता। और जब भिन्न प्रकार के मत और विचार और साधना रखने वाले साधक मिल जाते हैं तो बातचीत करते 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 अंत में जब स्नेह की एकता आती है तो हृदय से यही सद्भाव निकलता है कि हे प्रभु, मुझे तो मेरे इस पथ से पार लगाओ और मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को जो पथ पकड़ाया है तुमने, उससे इसको पार लगाओ। तो जब सबका जीवन पार हो जाए, जब हम त्यागने योग्य से अपने को छुटा सकें, और अभिन्न होने योग्य से अभिन्न कर सके तो उस पूर्ण जीवन में किसी प्रकार की भिन्नता रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी। तो पूरा होगा तो सब हो ही जाएगा, उसके बाद कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए विशेष करके ईश्वर विश्वास के संबंध में संघ का यह निवेदन है कि आप अपने मत का आग्रह मत करिए दूसरों के लिए। अपने लिए तो डटे रहो अपनी जगह पर, लेकिन दूसरों के लिए आग्रह मत करो व्यक्तिगत सत्य का, और दूसरों के मत का विरोध मत करो। ठीक है, आपकी ऐसी साधना है तो सर्वसमर्थ आपको इसी साधना में सफलता दे दें। आपका ऐसा मत है तो ठीक है, अपने मत के अनुसरण से आपका जीवन पूर्ण हो जाए, ऐसी मेरी सद्भावना है।
तो स्नेह की एकता अंत में रह जाएगी। अब ईश्वर विश्वास पर आइए, ये किसकी साधना बन सकती है? ये तो ये उनकी बन सकती है जिनके जीवन में सहज भाव से विश्वास करने की रुचि है। सहज भाव, जोर डाल के नहीं, जबरदस्ती करके नहीं, तर्क से नहीं। तर्क से ये नहीं होता है, तर्क से तो ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और सच पूछिए तो आज के आधुनिक विज्ञान वेत्ता भी इस बात को मानने लग गए कि तर्क से संसार भी सिद्ध नहीं होता है, संसार भी तर्क से सिद्ध नहीं होता है। तो तर्क की बात नहीं है, ईश्वर में विश्वास की बात है, विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है भाई? तो मैंने तो इस प्रकार से माना कि जो कुछ मेरे देखने सुनने और जानने में आया उससे मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिए गुरु के मुख से सुनकर, संत के मुख से सुनकर, ग्रंथ के वाक्य के आधार पर बिना देखे बिना जाने परमात्मा को मानना पड़ा। तो मैंने तो बेबसी में माना और कुछ मेरे लिए जीवन का आधार बन नहीं सका। तो हमने कहा कि अब अपना पुरुषार्थ सब थक ही गया है और आखिर जीवन का प्रयोग करके देखना ही है, तो एक बार तो संत की वाणी सुन करके ही देखो, मान करके ही देखो, उसको जीवन का आधार बना करके ही देखो कि क्या होता है। तो इस तरह से मैंने माना। आप भाई बहनों में से बहुत से ऐसे सरल हृदय के भाई बहन हैं जिन्होंने हमारी तरह तीन पांच नहीं लगाया कि क्यों माने और कैसे माने, ये सब नहीं किया, सहज भाव से सत्ता स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया। तो अब इसका क्या महत्व होता है इस जीवन में, सो मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं। तो मैंने ऐसा पाया अपने लिए और मैं सोचती हूँ औरों के लिए भी ऐसा ही होगा। मैंने ऐसा पाया कि जब तक मेरे जीवन में ईश्वर के संबंध में धारणाएं स्पष्ट नहीं थी तो तब तक मुझे उनकी उपस्थिति का कोई भी आभास मिलता नहीं था। उनकी शक्ति काम नहीं करती थी ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है ना? तो काम तो वो हर समय हो रहा है, हर समय काम हो रहा है और हर समय उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मैं क्या बताऊं इस अहम रूपी अणु की विलक्षणता। मैं कहती हूँ कि संसार में आश्चर्यजनक बातें लोग देखते रहते हैं और कहते हैं ये विश्व का पहला आश्चर्य है, ये दूसरा आश्चर्य है, तो अब तक गिनती मैंने सुनी है कि आठवां आश्चर्य है। तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा आश्चर्यजनक विलक्षण रचना जो है वो हम लोगों का अहम ही है। सबसे विलक्षण, सबसे विचित्र, आश्चर्य से आश्चर्य क्या है कि जब तक मैंने जीवन के आधार के रूप में बिना देखे बिना जाने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया तब तक उसका कहीं कुछ ट्रेस नहीं मिलता था। संत ने कहा कि उनको तो मालूम है कि तुम उनकी अपनी हो, तुम भूल गई हो मेरे कहने से तुम स्वीकार कर लो। उनको मालूम है,
वो तो जानते हैं कि तुम उनकी अपनी हो, तुम भूल गई हो, तुम्हें याद नहीं। तो मेरे कहने से लाली एक बार मान लो। तो झक मार करके मैंने माना, खुशी से तो नहीं, लेकिन संत की कृपा, भगवत कृपा, मानव जीवन की मंगलकारिता, अहम में इस स्वीकृति के आते ही जीवन बदलता है, सृष्टि बदलती है। और जो कहीं पर अत्यंत छिपा हुआ बड़ा रहस्यमय कुछ, जिसका कहीं ट्रेस न मिलता हो, उसकी उपस्थिति का अनुभव करने की क्षमता साधक में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्या होता है, ये सब कलाएं वे कलाकार जानते हैं। सबसे बड़े कलाकार हैं, उनको सब विधि आती है। बिगड़े बिगड़े मिजाज के लोगों में कैसे अपनी उपस्थिति को स्थापित कर दें, स्टैंप लगा दें, बता दें, जैसे आंख में उंगली डालकर दिखा दें, ये सब कलाएं वे जानते हैं। और मनुष्य के अहम में यह विलक्षणता है कि सत्य की स्वीकृति वो ले सकता है, और स्वीकृति लेने मात्र से उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये सब बातें आपके जीवन के सत्य के रूप में संघ की ओर से सेवा में मिलेगी। अब शांत।